पूज्य महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। एक कविता नहीं है, केवल दो चार फूटे शब्दों से ऋषभ सागर महाराज जी ने कहा कुछ लिख लो, तो सुबह लिख लिया। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि शायद ऋषभ सागर महाराज जी कन्नड़ में बहुत अच्छी कविता बनाते हैं। यहाँ आप लोगों का सौभाग्य नहीं है या आपका पुण्य कम पड़ा जो ऋषभ सागर महाराज जी ने कन्नड़ में कविता आपको नहीं सुनाती। तो उनकी आगे से ये छोटी सी दो चार लाइन लिखी है, आप लोग केवल तालियों के माध्यम से यदि मुझे साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम आए इस धरा पर, तुम आए इस धरा पर, मानो सबके स्वप्न साकार हो गए। तुम आए इस धरा पर, मानो सबके स्वप्न साकार हो गए। लेकर दर्शन गुरुवर का, लेकर दर्शन गुरुवर का, मानो प्राणी संसार पार हो गए, मानो प्राणी संसार पार हो गए। महाराज जी की इस तन की विशेषता है कि मार्दव तातो तन में बसती, अरे मार्दव तातो तन में बसती, मन पवित्र की धारा है मेरे गुरुवर नियम सागर। मार्दव तातो तन में बसती, मन पवित्र की धारा है मेरे गुरुवर नियम सागर। हर आगम की गारा है, हर आगम की गारा है। संतों के भी महान संत है, संतों के भी महान संत है, आत्मज्ञान से उभरे है। संतों के भी महान संत है, आत्मज्ञान से उभरे है, जिन्हें हिमालय छू न सकता, जिन्हें हिमालय छू न सकता, इतने ऊंचे तारे हैं, इतने ऊंचे तारे हैं। धर्म ज्ञान दे रहे हैं जीवों को, धर्म ज्ञान दे रहे हैं जीवों को, वे धर्मधारी दिवाकर है और सत्य अहिंसा समता के, सत्य अहिंसा समता के रत्न त्रय की उजागर है, रत्न त्रय के भी उजागर है। आप शायद ऋषभ सागर महाराज जी के पास में गए नहीं, जब भी जाएंगे हंसते रहते हैं, बहाते हैं, बहाते हास्य रस की परम धारा, बहाते हास्य रस की परम धारा, ये ऋषभ सागर है। और आत्म तत्व का कर लो दर्शन, आत्म तत्व का कर लो दर्शन, ये नियम सागर है, ये नियम सागर है। और महाराज जी का ज्ञान आप सबको पता ही है, लेकिन जैन दर्शन के अलावा इनने वैदिक शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान है। वेदों की ऋचाएं तुम्हें हैं, वेदों की ऋचाएं तुम्हें हैं, तुम्हें है गीता के मधुर छंद। वेदों की ऋचाएं तुम्हें हैं, तुम्हें है गीता के मधुर छंद। नमोकार की ध्वनि तुम हो, नमोकार की ध्वनि तुम हो, और उपनिषदों के मूल मंत्र हो, उपनिषदों के मूल मंत्र हो। महाराज जी अपना खुद का स्वाध्याय करते ही है, लेकिन जो व्यक्ति उनके पास शंका समाधान करने के लिए आता है उस व्यक्ति को बहुत सारा अपना समय दे देते हैं। जीवन की ज्योति जगाने इनने, जीवन की ज्योति जगाने इनने, खुद को बना दिया है बाती। जीवन ज्योति जगाने इनने, खुद को बना दिया है बाती, और जीवन को सौंपा इनने, जीवन को सौंपा इनने, करुणा की अनुपम थाली, करुणा की अनुपम थाली। गंगा से काव्य कला के कठिन पथ पर महाराज जी ने बहुत सारी किताबें लिखी, संस्कृत की भी है, विद्याष्टकम, बहुत अच्छी किताबें लिखी है। काव्य कला के कठिन पथ पर, काव्य कला के कठिन पथ पर चलाते लेखनी अविराम, काव्य कला के कठिन पथ पर चलाते लेखनी अविराम, जिनकी समाधान, जिनकी शंका समाधान सुन, जिनकी शंका समाधान सुन, मन पाता है विश्राम, मन पाता है विश्राम। गंगा से भी गहरे गुरुवर, गंगा से भी गहरे गुरुवर, इनको समझना मुश्किल है जो समझ पाए इनको। गंगा से भी गहरे गुरुवर, इनको समझना मुश्किल है जो समझ पाया इन गुरुवर को, कुछ न उसको कुछ न मुश्किल है, उसको कुछ न मुश्किल है। मैं चरणों में आया गुरुवर, मैं चरणों में आया गुरुवर, मुझको पावन कर देना। मैं चरणों में आया गुरुवर, मुझको पावन कर देना, आत्म उपदेशामृत पावन कर, आत्म उपदेशामृत पावन कर, मेरा जीवन सुधार देना, मेरा जीवन सुधार देना। लास्ट चार पंक्तियां गुरुओं के चरणों में, सात नियम सागर का हो तो भक्त, यहाँ तो नियम सागर महाराज जी कहना चाहिए था, लेकिन भक्त जब भगवान के सामने जाता है तो स्तुति के कुछ भी शब्द निकल आते हैं। सात नियम सागर का हो तो सार दिखाई देता है, सात नियम सागर का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता को आकार दिखाई देता है। होली दीपावली दशहरा आते हैं चले जाते हैं, होली दीपावली दशहरा आते हैं चले जाते हैं, मगर जिस नगर में, मगर जिस नगर में नियम सागर हो वहाँ हर दिन त्योहार होते हैं, वहाँ हर दिन त्योहार होते हैं। बोलो आज इस हर रविवार का जो क्रम था उस क्रम को जरा हेरफेर किया है। लोग आएंगे आराम से 4:15 बजे तक, तो आज सबसे पहले बड़े महाराज जी का प्रवचन, समय बचेगा तो ऋषभ सागर जी का, उसके बाद में और बड़ा कार्यक्रम रखा है। जिन लोगों ने इस वर्षा योग में चातुर्मास में चातुर्मास कमेटी वालों को जो विशेष सहयोग दिया या बाहर से आए हुए लोगों की सेवा में विशेष सहयोग दिया, उनका सम्मान कार्यक्रम भी रखा है। इसलिए सबसे पहले महाराज जी का प्रवचन, उसके बाद में बचा हुआ टाइम देखेंगे शेड करेंगे सम्मान में या विशेष महाराज जी के प्रवचन में बनता है। हम सब लोग मिल करके पूज्य मुनि श्री नियम सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे। आज का यह प्रारंभिक सभा का संबोधन, छोटी से बड़ी होने वाली सभा को संबोधित करें इस मनोभावना के साथ बोले परम पूज मुनि श्री नियम सागर जी महाराज जी की।
नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्झायाणं सावुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्व मंगल मांगल्यम् सर्व कल्याण कारकम् प्रधानम् सर्व धर्मानाम् जैनम् जयतु शासनम् जैनम् जयतु शासनम् पंच परमेश्वरी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। संसार में अनंत संसारी प्राणी अनंत सुख की इच्छा रखते हैं, यानी सुख ऐसा मिले जिसके मिलने पर दुख कभी ना आए, ऐसे सुख की कामना कौन नहीं करता। सब करते हैं, लेकिन खोजते हैं किस सुख को? संसार सुख को। संसार सुख का नाम अनंत सुख तो है ही नहीं। सुख के बाद दुख का आना और दुख के बाद पुनः सुख का मिलना, फिर उसका भी नाश होना, पुनः दुख मिलना, सुख दुख सुख दुख सुख दुख, ये रेलगाड़ी है। आवाज करती हुई गाड़ी, सुख दुख सुख दुख सुख दुख, आवाज करती हुई गाड़ी जो चलती है, उस आवाज करने वाली गाड़ी का नाम ही है संसार की गाड़ी। हम सभी संसार में अनादिकाल से अक्षय सुख की अपेक्षा रखते हुए भी साधना हमारी किसकी होती रहती है? अल्प सुख की, वो है अक्षय सुख। और हम जिसका पुरुषार्थ करते हैं वह पुरुषार्थ क्षय होने वाले सुख के प्रति होती है, होता है पुरुषार्थ। और जब सुख मिला और छूटा, उस समय पुनः हम आकुल व्याकुल होते हैं, अभी अच्छा था, बुरा क्यों आया, बुरा क्यों हुआ, ये सतत चल रहा है। और इस परिपाटी को समाप्त करना है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये जो परिपाटी चली आ रही है, प्रत्येक गति में इसको हम देख सकते हैं। किसी भी गति में शाश्वत सुख की उपलब्धि है ही नहीं, जब तक गति में है जीव, किसी न किसी गति में, मनुष्य गति में भी कहां है, जब तक गति में है, गति में है, शाश्वत सुख की उपलब्धि उसको नहीं है। गति के बंधन से मुक्त जो हुआ है या मुक्त आधा हो चुका है, उनको शाश्वत सुख की उपलब्धि हो गई होती है। जैसे पंच परमिष्टियों में दो परमिष्टी ऐसे हैं जिनके पास धारावाहिक अनंत सुख की उपलब्धि हम देख सकते हैं। उनके जीवन में दुख की घड़ियां आती ही नहीं, उनके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं आता, उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आता, उनके सामने कोई समस्या खड़ी नहीं होती जिसको हम दूर करके आगे बढ़ सके। सांसारिक बाधाएं उनके सामने कुछ भी नहीं है। अरहंत के सामने कोई बाधा नहीं, सिद्ध भगवान के सामने तो और भी बाधाएं नहीं। सिर्फ सिद्ध भगवान में और अरहंत भगवान में अंतर इतना होता है, सिद्ध भगवान कर्मों की बाधा से भी परे हैं, अरहंत भगवान कुछ कर्मों की बाधा से सहित हैं। बाधा से तो सहित अभी बंधन है, उस बंधन की अनुभूति तो कर ही रहे हैं। और जो कर्म हमारे जीवन के सुख दुख में कारण बनते थे, कुछ क्षण के लिए सुख है तो कुछ क्षण में दुख है, ऐसे भी कर्म हैं जो कारण बनते हैं हमारे लिए, उन्हीं कर्मों का नाम है घाती कर्म। घाती कर्म के उदय में हमारे लिए नियम से सुख और दुख मिलता ही है, पर आघाती कर्म का अवशेष रहने पर, चार कर्म अवशेष रहे अघाती कर्म, वेदनी कर्म, गोत्र कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, चार कर्म जब अवशेष रहते हैं तो ऐसी समस्या हमारे पास नहीं रहती। कैसी समस्या? अभी सुख था और अभी छूट गया, दुख आ गया सामने। अनंत अरहंत भगवान को अनंत सुख है या क्षणिक सुख है? अनंत सुख को उन्होंने प्राप्त किया। इस अनंत सुख को रोकने वाले कर्म कौन? तो कहना पड़ता है आठ कर्म में से जो घाती संज्ञा को प्राप्त हैं, घाती नाम पाते हैं, ये घाती कर्म अनंत सुख को रोकते हैं और क्षणिक सुख जीव को देते हैं, जिसको कहते हैं इंद्रिय सुख। आत्मिक सुख कुछ भी नहीं, इंद्रिय सुख। और उसमें मुख्य रूप से अनंत सुख को रोकने वाले दो हैं, चारों नहीं, दो। एक मोहिनी कर्म हमारे अनंत सुख को रोकता है और एक अंतराय कर्म उस सुख को भोगने में, जो अनंत सुख है उसको भोगने में वह बाधक बनता है। क्यों? सुख तो मिल सकता है, मिल भी जाए तो कहता है उसको, उस अनंत सुख को भोगने के लिए, अनुभव करने के लिए तुम्हारे पास बल भी तो चाहिए। उस बल को कुंठित करने वाला मैं हूं। ये कौन सा कर्म कहता है? अंतराय कर्म। और कौन सा अंतराय कर्म? पांच प्रकार के अंतराय कर्म में से एक कर्म का नाम लेना चाहिए जिसको वीर्यांतराय कहते हैं। शक्ति, बल, वीर्यांतराय कर्म के अभाव से अनंत शक्ति प्रकट होती है और भोगांतराय कर्म का क्षय होने पर उस अनंत सुख को भोग पाता है। अब अंतराय कर्म का उदय है तो पांचों का उदय रहेगा, रहेगा पांचों का ही। भोगांतराय का भी उदय रहेगा, वीर्यांतराय के भी उदय रहेगा, दानांतराय का भी उदय रहेगा, सबका एक साथ रहेगा। अब यह उदय जीवात्मा को ये कहता है कि तुम्हें भोगने की क्षमता नहीं रहेगी। भले ही तुमने अनंत सुख को रोकने वाला जो कर्म है, मोहनी कर्म, उसको तुमने नष्ट कर दिया है, कर भी डालो, लेकिन मैं जब तक प्रसन्न नहीं हूंगा, मैं शनि देवता हूं, मैं जब तक प्रसन्न नहीं हूंगा तो दुनिया नहीं चल सकती। और ये देवता मोहिनी कर्म का देवता, ये देवता कौन सा देवता? ये गंतर देवता, पीछे छोड़ता ही नहीं। ये व्यंतर देवता संसारी प्राणी को कभी पीछे छोड़ा ही नहीं, छोड़ता भी नहीं। और इस व्यंतर देव के प्रभाव को कम करने के लिए मुनि महाराज पिंची से झाड़ते नहीं, पिंची देते हैं। देते का मतलब घर में रखने के लिए नहीं, दीक्षा देते हैं। ये समझ रहे हैं क्या? पीछे परिवर्तन का कार्यक्रम आ रहा है और मोहिनी कर्म छूटने के लिए हमारे लिए पुराने पीछे देते नहीं। इस व्यंतर देवता के प्रभाव को जो सता रहा है प्रतिक्षण, इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए पिंछे लेनी पड़ती है। महाराज नियम से तीर्थंकर हो तो कोई बात नहीं, पिंछी की जरूरत नहीं, वैसे ही अंतर देवता भाग जाएगा। आजकल क्या करते हैं, किसी को व्यंतरदेव लग गया तो उसको छुड़ाने के लिए मुनि महाराज के पास लिया जाता है और पिंछी से महाराज ऐसे झाड़ते हैं, भूत निकालते हैं, झाड़ते हैं। ऐसा झाड़ने से जाएगा क्या? भूत नहीं जाएगा। तुमने कुछ न कुछ उसके प्रति पूर्व भव का कोई संबंध है, कुछ तो किया है, कुछ तो संबंध जुड़ा हुआ है, इसलिए वो व्यंतर सवार हो गया। और पंचम काल में तो व्यंतर बहुत कम सवार होते हैं, नाटक सवार ज्यादा होता है, बहुत कम। व्यंतर देव तो कहीं है भी नहीं, वो आते भी नहीं और सताते भी नहीं। पर मुझे व्यंतर आता है, मुझे सताता है, मुझे मेरे ऊपर आता है, ये कह करके नाचने वाले 100% मिलेंगे। और उनको व्यंतर देव आया है कि नहीं शरीर में, इसकी परीक्षा करना चाहो तो बहुत जल्दी परीक्षा कर सकते हैं, बहुत जल्दी। कैसा करें? एक जोर से चाटा दे दें, पूछे व्यंतर देवता आया है? आया है। एक और दे दें, आया है? आया है। ज्यादा मारोगे तो वो कहेगा मुझे नहीं आया है, मारो मत, मैं नाटक कर रहा था। सत्य उगलता है, नाटक करने वाले अधिक रहते हैं, लेकिन सही मायने में व्यंतर जिसको आता है, जिसके शरीर में, ऐसे लोग दुनिया में ना के बराबर, लाखों में एक आध हो ना हो, व्यंतर आते नहीं। और अगर कोई पूर्व भव का वैर हो, व्यंतर आ सकता है, सता सकता है, खुद को सता सकता है, खुद पीड़ित हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत कम है, वो भी बहुत कम है। व्यंतरदेव सताता है इस व्यक्ति को, ऐसा कहने वाले लोग बहुत कम है। मुझे सताता है ये कहने वाले ज्यादा अधिक हैं। वास्तव में उनको सताता है ऐसे लोग बहुत कम हैं। एक बार ऐसी घटना घटी थी, एक लड़की को व्यंतरदेव लग गया और वह जिस किसी प्रकार से अपनी चेष्टा करने लगा, कैसे बोलने लगा, हा हा करने लगा, जो एक्शन होता है वो सब दिखाई देने लगे। कुछ लड़के उनको पकड़ करके मेरे पास बुला ले आए महाराज, इनको और वो सभी लड़के साथ में थे, मैं विहार कर रहा था और वो साथ में चल रहे थे। गर्मी का दिन, 10-15 किलोमीटर चलने के बाद एक रेस्ट हाउस में, बीच में सरकारी रेस्ट हाउस, वहां पर विश्राम हुआ सायंकाल। और वो जो भी साथ में चल रहे थे लड़के, वो अंदर न सो करके बाहर बगीचे में सो गए ठंडी हवा में, और धरती इतनी तपी थी, तप्त धरती पर और सो गए। रात को गर्मी, तपी हुई धरती कम से कम 3-4 घंटे तक ठंडी नहीं होती, और आते थके हुए थे और लेट गए, एक चटाई बिछाकर, जमकान बिछाकर। जिन लड़कों के पास शारीरिक शक्ति अच्छी थी उनको तो व्यंतरदेव नहीं आया, और जिसके शरीर में शक्ति कम थी, कमजोर शरीर था, उनको व्यंतरदेव आ गया। तो कमजोर लोगों को व्यंतरदेव पकड़ता है क्या, और शक्तिशाली आदमियों को छोड़ता है? ऐसा व्यंतरदेव आना हो, तुम पहलवान भी हो तो आ जाएगा, कमजोर हो तो भी आ जाएगा। वास्तव में आपका संबंध कुछ उससे होना चाहिए। विपरीत संबंध हो तो सताने के लिए आ सकता है, पर बात ऐसी थी, शाम को वो सारे के सारे लड़के सो गए और सुबह 5 बज गया। 5 बजने से पहले ही वो जो कमजोर लड़का था उठ करके बैठ गया और चिल्लाने लगा, कुछ भी बोलने लगा, कुछ भी बोलने लगा। सब कुछ, सबकी नींद खुल गई। ये क्या हो गया, क्यों बोल रहा? उसको पकड़ा, क्यों कर रहे हो ऐसा? तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, होश में नहीं है वो, समझ में ही नहीं आ रहा, होश में नहीं है, ये परिस्थिति बन गई। और 6 बज गया, घंटे तक चिल्लाया चिल्लाया चिल्ला, 6 बजने के बाद अंदर अपने पास ले आए, महाराज इसको ऐसा हो गया, ऐसा कोई देव लग गया, इसको व्यंतर देव लग गया। हमने कहा व्यंतर देव नहीं लगा है, इसको व्यंतर देव नहीं लगा है, इसको कुछ नहीं हुआ है। गर्मी जो बढ़ गई है, ये गर्मी जब दिमाग में चढ़ जाती है तब भी व्यक्ति की चेष्टा इसी प्रकार से होती है। हमने कहा इसको ले जाओ और सबसे पहले सिर पर बर्फ का पानी का उपचार करो, बर्फ के पानी में एक बार इसको नहला दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। महाराज ये तो वो नहीं है, ये तो व्यंतरदेव ही है। व्यंतरदेव आने पर जैसी चेष्टा होती है ना, वैसा ही कर रहा था, इसलिए उनको विश्वास नहीं था कि व्यंतरदेव नहीं है। और हमने कहा ये व्यंतरदेव कुछ नहीं है, ये तो गर्मी चढ़ गई है, ये ठीक हो जाएगा, और मैं जो कह रहा हूं उतना कर लो। वो जा करके बर्फ के पानी से सिर पर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया, सारे शरीर को, शरीर की गर्मी को उतार दिया, उतारते ही वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया, स्वस्थ हो गया, और स्वस्थ होकर के अपने पास आया, ठीक से बोलने लगा। होता कुछ है और लोग समझते कुछ हैं। गर्मी भी तो एक व्यंतर है, वो गर्मी चढ़ गई तो व्यक्ति की हालत खराब हो सकती है, स्मृति खो जाती है, गर्मी से भी स्मृति खो सकती है, और ये कारण बन सकता। कर्म रूपी गर्मी यह प्रत्येक जीव को अनादि काल से चढ़ी हुई है, और उसमें व्यंतर देव कौन है? 8 कर्म हैं, 8ों ये सताने वाले ही कर्म हैं, कोई भी कर्म जीव को सुख देने वाला नहीं है। पुण्य कर्म भी दुख ही तो देता है, कहां आपको निरंतर सुख देने वाला है, क्षणिक सुख देता है, और वह लास्ट में आपको दुख का ही कारण बन करके निकल जाता है। पुण्य कर्म के उदय में हम सुखी तो होते हैं, कैसे सुखी होते हैं? इंद्रिय सुख भोग करके सुखी होते हैं, ये पुण्य कर्म का फल है। इंद्रिय सुख को भोग करके हम सुखी हो जाते हैं, लेकिन इंद्रिय भोग को भोगते समय कौन सा कर्म बंद होता है? भोगते समय सुख का उदय है, पूर्व का है वो, पर बंधते समय कौन सा कर्म बंद होता है? इंद्रिय भोग भोगते समय पूछ रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं? कौन सा कर्म बंद होगा? हाँ, इंद्रिय सुख भोगते समय कोई भी पुण्य कर्म का बंद करता है क्या? हाँ? पाप कर्म का ही बंद होता है। अब ये बताइए, पुण्य का उदय आया, आपने सुख का अनुभव किया, सुख मिला भी, लेकिन ये पुण्य कर्म जब तक उदय में था तब तक आपने सुख भोगा, वो जब अब उसका उदय समाप्त हो गया, विघ्न आ गया, पाप का उदय चालू हो गया, सुख आया, फल देकर के चला गया, हम सुख में थे, लेकिन उस सुख को भोगने से कौन सा कर्म का बंद हुआ? पाप का। और पाप का फल क्या है? दुख है। पाप का फल दुख है, और यह दुख किससे मिला? उनसे मिला ना। अगर पुण्य के उदय में मिलने वाले पुण्य के फल को हम नहीं भोगते तो क्या ही मिलता? हाँ, इसका मतलब पुण्य आकर के हमको अच्छा नहीं किया तो पुण्य पर दोष न दें कि इसने अच्छा नहीं किया। हमने बुरा किया, पुण्य का बंद था पूर्व का, और वह उदय में आया, सामने पुण्य का फल दिखा, उस फल के प्रति हम बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ किए और उस फल को हमने चखा, भोगा, उसमें सुख मिला। इस पुण्य के फल को स्वीकार करते समय, सेवन करते समय किसी को भी पुण्य का बंद नहीं होता, ये तो गारंटी है, ये तो गारंटी है। और वह पाप कमाता हुआ चला जाता है। जरा ये सोचो, उस पुण्य की जगह पाप का उदय होता तो उसको भोग सामग्री नहीं मिलती तो भोगता ही नहीं था। पाप का उदय है, भोग सामग्री नहीं मिली, भोगा नहीं, अब आपको पुण्य बंधा क्या, पाप बंधा क्या? नहीं, आप अभाव महसूस करते हुए ऐसे ही निकल गए। नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला, पाप का उदय है, नहीं मिलने वाला है, ये आपको पता है, तो आप यदि उस पाप के फल में कुछ भी नहीं मिल रहा है अगर समता भाव धारण करते तो आपको पाप का बंध नहीं होता। पर समता भाव अगर धारण नहीं किया, पाप का उदय है, कुछ नहीं मिल रहा है, समता भाव नहीं रखा, हाय हाय मुझे नहीं मिल रहा है, हाय हाय मुझे नहीं मिल रहा है, आकुल व्याकुल होते रहे, तब कौन सा कर्म का बंध होगा? आपको सब पता है, सब गणित मालूम, पहले से मालूम है, लेकिन उस गणित को क्यों नहीं छुड़ाते करेक्ट? गणित का सूत्र मालूम नहीं, अभी उस दे देता हूं, ले जाना आज, बहुत अच्छा। जिसके पास सूत्र नहीं है, सूत्र यहां से जितना चाहिए उतना ले जाओ और जीवन को दीपावली बनाओ, अमावस्या मत बनाओ। अनादिकाल का इतिहास हमारा अमावस्या का इतिहास है। हमारे जीवन में कभी प्रकाश मिला ही नहीं, अंधकार ही अंधकार रहा है। और इस अंधकार में हमें ये तक पता नहीं चल रहा है कि हम सुखी क्यों हैं और दुखी क्यों हैं, ऐसा क्यों, जीवन क्या है, रहस्य क्या है, कुछ भी चीजें ये पता नहीं है। ये क्यों पता नहीं है? हम चिंतक नहीं हैं, उस ओर विचारक नहीं हैं। जीवन क्या है, मरण क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भोग क्या है, योग क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इन तत्वों पर, इन विषयों पर कभी आपने चिंतनशील होकर के एकाध घंटा शांत बैठ करके इन विषयों पर विचार किया? अमावस्या इसीलिए है जीवन में। हमारे जीवन में जो अंधकार ही अंधकार है वो इसी कारण से है, हम चिंतक नहीं हैं। और जो चिंतक बन जाता है उस रास्ते को छोड़ देता है जो अमावस्या का रास्ता है, अपने आत्मा में उजाला कर लेता। सम्यक ज्ञान का दीप जलाओ, एक दीप। वर्तमान में आप पांच दीप नहीं जला सकते, चार भी नहीं जला सकते, तीन भी नहीं जला सकते, दो दीप जल सकते, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, एक सुमति ज्ञान और एक सुश्रुत ज्ञान। दो दीप जलाओ अपने जीवन में। अनादिकाल से दो ज्ञान तो अपने पास है ही, दो ज्ञान तो है ही, दो से कम तो कभी रहे ही नहीं, दो ज्ञान तो है। लेकिन ये दो ज्ञान अमावस्या के अंधेरे में बुझे हुए होते, जीवन की अमावस्या क्या है? अज्ञानता ही जीवन की अमावस्या है। और ये दोनों ज्ञान अज्ञान है, कुज्ञान के रूप में है तो अंधकार है, अमावस्या है। और ये दोनों ज्ञान अगर बदल गए पूर्णिमा में, बदल गए तो बहुत कुछ है। इसी से जीवन की शुरुआत होती है। सुधार कहाँ है ये देखना है, सुधार अपने आप में, ज्ञान में। दो ही ज्ञान सुधारना है, एक मति ज्ञान और एक श्रुत ज्ञान। किससे सुधारना है? जैसा अभी पूछा, सूत्र नहीं मिला तो सूत्र ले लो। जिनवाणी आगम शास्त्र चौथे काल से अभी तक जीवित है और अभी आगे 18,500 वर्ष तक यह जिनवाणी सुरक्षित रहने वाली, जीवित रहने वाली है, सामने रहने वाली है सबकी। उस जिनवाणी के पास आएंगे तो सूत्र ही सूत्र मिलेंगे, चाहे जितना पढ़ लो। आठ कर्मों के वर्णन करने वाले जैनागम शास्त्र कितने हैं मालूम आप लोगों को? एक बार कहा था कितने हैं? 40, एक कम 40। धौला के कितने भाग? 16 भाग। जय धौला के 16 भाग और महाधौला के 7 भाग, ये सब मिलकर के एक कम 40-39 शास्त्र। उन शास्त्रों में सूत्र ही सूत्र हैं। किसी को भी उठा लो चिंतन कर लो, किसी को भी उठा लो चिंतन कर लो, प्रति शब्द यही बता रहा है, कर्म बंधन से मुक्त होना, जीवन को समझना, ठीक से चलना, अपने ज्ञान की रिपेयरिंग कर लेना। ज्ञान गड़बड़ है, ज्ञान को सुधार लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। अंधकार ज्ञान में ही है आया हुआ, मिथ्या ज्ञान अंधकार का रूप है और सम्यक ज्ञान प्रकाश का रूप है। दो दीप चलाओ, जो मति ज्ञान है उसके अंधकार को हटाने के लिए सूत्र की ज्योति को स्पर्शित कर दो, भगवान की उस जिनवाने के सूत्र सम्यक ज्ञान की ज्योति से इस बाती को स्पर्श करोगे तो ये उद्दीप्त होगी। एक मति ज्ञान रूपी ज्योति को ठीक करना है और एक श्रुत ज्ञान रूपी ज्योति को ठीक करना है, दो ही ठीक करना है और दोनों ठीक हो गए तो बात पूरी हो गई। धीरे धीरे कदम बढ़ाते 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 आप अपने कार्य सिद्धि पर पहुंच सकते हैं। कार्य सिद्ध हो गया तो कुछ करने धरने का नहीं रहा। दीपावली हम बाहर से ही मनाते हैं, कितनी दीपावली आए और गए, ये दीपावली के दिन कितने आए और कितने गए, हाँ? क्या किया है हमने, दुनिया को प्रकाशित किया है दीप से, अपने आंगन को प्रकाशित किया है केवल, घर के द्वार पर इधर एक दीपक रखा इधर एक दीपक, दीपक भी नहीं रखा, मोमबत्ती मेनबत्ती वही तो मेन है, मेनबत्ती जलाना ही जीवन में मेन हो गया था, उसी को मेन समझते थे। दीपावली मनाने का मतलब यह है कि मेनबत्ती जलाओ, दीपावली आ गई है और प्रकाशित करो अपने आंगन को, बस ये दीपावली। और क्या क्या किया, उसको जलाया और आकाश को भी प्रकाशित किया, सुई फट, बहुत आनंद आया, यहां से वहां गया और फट किया, हाँ भैया क्या आनंद आया, यहां से सुई गया ऊपर फट किया अनेक कलर में, नीला हरा सफेद पीला अनेक कलर, ये दीपावली मनाने का ढंग है। दीपावली कहीं बाहर मनाई जाती है और यदवा तद्वा जिस किसी प्रकार से मनाई जाती है इसका नाम दीपावली नहीं, ये गलत तरीका है। दीपावली की प्रसिद्धि कब से हुई, महावीर भगवान मोक्ष गए थे उससे तो हम मनाते आ रहे हैं, उससे पहले हो ना हो उसकी बात हम नहीं करते, पर जिस दीपावली को हम आगे चार दिन कब आ रही है, 7 तारीख 9 तारीख को आ रही है दीपावली, वो 9 तारीख के दीपावली को किसका निर्वाण मान करके आप दीपावली मनाते हैं, महावीर भगवान की। उससे पहले भी दीपावली थी पर दीपावली के दिन भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था, इसलिए हम महावीर का स्मरण करते हैं उस दिन विशेष रूप से और दीप जलाते हैं, किसकी स्मृति के रूप में, गौतम गंधर्व उनके शिष्य, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी शाम को दिनस्थ के समय संधि काल में इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और सुबह के संधि काल में भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई, एक को मोक्ष मिला और एक को अरहंत पद मिला, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, एक सिद्ध बन गए और एक अरहंत बन गए। उससे पहले वो गुरु थे गौतम स्वामी, छठे सप्तम गुणस्थान में झूलते थे, छद्मस्त थे, विशद ज्ञान नहीं था, 3 लोक के ज्ञाता नहीं थे, सर्वज्ञ नहीं थे, उनका ज्ञान छद्मस्त ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, 4 ज्ञान थे, 4 दीप जलाए थे, सम्यक ज्ञान के दीप 4 जलते थे उनकी आत्मा में, पर एक दीप नहीं जला पाए थे, कौन सा दीप? केवल ज्ञान का दीप नहीं जला पाए थे। कब तक नहीं जला पाए? जब तक कि महावीर को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई तब तक नहीं जला पाए, और ऐसा होता भी नहीं। जब तक उनके भगवान मोक्ष नहीं जाएंगे तब तक इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ये भी नियम है। उनके मोक्ष जाने के बाद इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नियम से होगी, और ऐसा हुआ। सुबह प्रातः वेला में संधि काल में भगवान महावीर इधर मोक्ष चले गए और गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान की प्राप्ति शाम के संधि काल में हो गई। गुरु और शिष्य दोनों, महावीर स्वामी गौतम स्वामी के गुरु भगवान हैं, शिष्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था इसके स्मृति में दीप जलाना, एक दीप जला करके उस घटना को उस इतिहास को याद करना, ये हमारा बाहरी कर्तव्य होता है, एक व्यवहार होता है। आज दीपावली है, इसकी स्मृति के रूप में याददाश्त इतिहास का स्मरण करने के लिए हम ये सब कुछ करते, लेकिन भीतर में क्या करना चाहिए ये किसी को किसी से मतलब ही नहीं। उससे भीतर की दीपावली आज तक नहीं मना पाए, मैं उस पर जोर दे रहा हूं। आज लड्डू चढ़ाना सबको आता है, पटाखे फोड़ना सबको आता है, मोमबत्ती जलाना पंती जलाना सबको आता है, पर मिथ्या ज्ञान के अंधकार को हटा करके सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति जलाना किसको आता है? वो असली दीपावली है। किसने किया? यदि नहीं किया तो व्यर्थ है हर साल दीपावली मनाना। फटाके फोड़ करके पैसा बर्बाद किया, जीवों की हत्या हो गई, हिंसा हो गई, असंख्य वायुकाय जीवों के हिंसा होती है। कबूतर तो गांव ही त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और तो गए ही हो, उनको भी पता चला होगा, सपने में आया होगा दीपावली का दिन आ रहा है, और उससे पहले ही चलो अपन 3-4 हजार कबूतर हैं यहाँ पड़गांव में, एक भी कबूतर नहीं दिखता, एक भी नहीं। 3-4 हजार में से एक तो रहता है यहाँ निडर होकर के, देखेंगे दीपावली क्या करता है। तो दीपावली आने से पहले ही उन्होंने छुट्टी मना लिया, ये गांव ही छोड़ो। मतलब ये है कि यहाँ फटाके बहुत फोड़ते हैं, पशुओं को भी पता चलता है, पहले से ही पता चलता है किस मौसम में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, उससे पहले ही सावधान हो जाते हैं। सुनामी आने से पहले पशु तो सावधान हो गए थे, मनुष्य को पता नहीं चला था, पशु नहीं मरे और मनुष्यों की हिंसा बहुत हो गई, पशुओं की हिंसा नहीं हुई। वो भविष्य को जानते हैं, उनका ज्ञान बहुत सूक्ष्म है। भूकंप में भी पशु को पता चलता है, मानव को पता नहीं चलता। दीपावली कैसे मनाना इस साल, ये बात करनी है। फटाके फोड़ के मनाना है क्या? मना लो, उसमें आनंद आता होगा ना, सुई ढब। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं मनाना, अपने बच्चों को पैसा नहीं देना। पटाखे के माध्यम से दीपावली मनाना पाप है, वो जो व्यवहार रूप से बाहरी दीपावली भी मनाते हैं वो भी मिथ्या दीपावली है। अंतरंगता तो है ही नहीं, बाहर का भी विकृत हो गया, प्रदूषित हो गया। बाहर से तो एक प्रतीक के रूप में, केवल ज्ञान के प्रतीक के रूप में एक स्मृति थी, एक पंक्ति, घी का दीपक जला करके रखा जाता। आज गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस गौतम स्वामी को याद करके, स्मरण करके उनको नमस्कार किया जाता। बस इतनी सी दीपावली है, और उस दिन विशेष रूप से सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा और स्वाध्याय और उस पर से प्रवचन। दीपावली क्या होती होता है इसके संबंध में प्रवचन सुनना चाहिए। ये अंतरंग दीपावली है, बहिरंग में एक दीप जला करके आप मना रहे हैं, वहां तक सीमित है। बाहर के दीप जलाने से अंतरंग का दीप जलता है ऐसा कोई अविनाभाव संबंध नहीं है। हाँ, अविनाभाव संबंध का मतलब ये जलाने से सम्यक ज्ञान भी जलता ऐसा कुछ है? तो बाहरी दीपक से अंतरंग दीपक का कोई संबंध नहीं है। अंतरंग दीप को जलाना हो दीपावली के दिन तो सूत्र चाहिए, और जो अभी सूत्र मिल रहे हैं ध्यान में रखना और इन सूत्रों से अंतरंग के दीप को जलाना। बाहर के दीपों को कैसे जलाना ये तो बता दिया, जिससे पाप न हो, जिससे हिंसा न हो, ऐसे दीप जलाना। दीप जलाओ तो ऐसे जलाओ जिसमें हिंसा न हो, और असंख्यात वायु का एक जीवों की हिंसा पटाखे से होती है। और देश में दीपावली मनाने की जो पद्धति है बिल्कुल अंधकारमय पद्धति हो गई है आजकल। कुछ समय पहले, साल 50 साल पहले इतना अंधकार नहीं था, इतना अज्ञानता नहीं थी, इतनी हिंसा नहीं थी, इतने फटाके फूटते नहीं थे, इतनी हिंसा नहीं होती थी जितना आज बढ़ गई है। जरा कल्पना करो, एक ही फटाका जिसको लगा करके आकाश में उड़ाया जाता है और वो कलर वाला होता है ना, 10 कलर फूटते हैं उसकी, उसकी क्या कीमत एक फटाके की? 50 रुपए, बस 100 तो नहीं, 50। 50 क्या कम हुआ? 50 रुपए कम से कम 50, और इससे भी ज्यादा कीमत वाले पटाखे है क्या? नहीं है। आप अनुमान कर लो, दीपावली मना रहे हैं, जरा अनुमान से सोचो, जरा दूर दृष्टि से सोचो। हमारे देश में गरीबी ज्यादा है क्या? नहीं। कितनी प्रतिशत? 60, 80, 70 मालूम है क्या? नहीं। क्या उसमें भी अंधकार ही है? 80% लोग गरीब हैं। रेखा के नीचे गरीबी रेखा के नीचे, यानी गरीब से भी गरीब, इतनी गरीबी है। दुखी है क्या? नहीं। वो बहुत दुखी है। एक गांव में 50 रुपए कीमत वाले पटाखे, 125 रुपए कीमत वाले पटाखे, 5 रुपए वाले, 10 रुपए वाले, 15 रुपए वाले, 20, 30 नाना प्रकार के पटाखे हर घर में, हर बच्चा, हर बड़ा व्यक्ति खरीद रहा है, फोड़ रहा है। अगर इन पटाखों के सारे पैसे को इकट्ठा किया जाए एक गांव में कितने निकल सकेगा? अनुमान से मैं पूछ रहा हूं, अनुमान क्या है इसका? पैसे का, एक लाख रुपए पेट भर गांव में, बिल्कुल एक लाख डेढ़ लाख दो लाख तक जाओ, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, अनुमान कर रहे हैं ज्यादा ही हो सकता है। अगर एक लाख इसी पैसे से उन गरीबों को बुला करके एक दिन का खाना खिलाया जाए, ये पाप का कार्य है क्या? असली दीपावली का कार्य है, असली दीपावली तो ये है, आज भगवान महावीर को मोक्ष हुआ है, गौतम गंधर्व को मोक्ष हुआ है, और उन्होंने संदेश दिया था, सूत्र दिया था कि दीपावली को कैसे मनाना, अहिंसा से मनाना, कैसे मनाना, दूसरे के लिए परोपकार करते हुए मनाना, दया करो, दया ही धर्म है, करुणा करो, करुणा ही धर्म है, हिंसा धर्म नहीं है, व्यर्थ में पैसे को जलाना धर्म नहीं है, करुणा का उपदेश दिया था, दया का उपदेश दिया था, गरीबों को दान मत दो, फटाके उड़ाओ, ऐसा उपदेश दिया नहीं दिया? और हम कर क्या रहे हैं? अस्पतालों में बेचारे रोगी मरीज पड़े हैं, उनको औषधि नहीं मिल रही, उनको फल फूल नहीं मिल रहे हैं, पैसा नहीं है, खरीद नहीं सकते, रोग को ठीक नहीं कर सकते हम, और हम यहाँ 150 रुपया का फटाका उड़ा रहे हैं, जला रहे हैं पैसे को। एक गांव की ये बात है, पूरे भारत में जितने सिटियां हैं, जितने छोटे मोटे गांव हैं, बड़े बड़े गांव हैं, महानगर हैं, इन सब में जितने बड़े गांव होते हैं, जितने महानगर होते हैं, उतने ही स्टैंडर्ड फटाके खरीद करके उड़ाया जाता है। क्यों? हम महानगर वाले कम नहीं, ये मनोरंजन के अलावा क्या है? केवल मन की संतुष्टि के लिए, और ये मन की संतुष्टि किसमें मिल रही है? सुई ढब इतने में मन की संतुष्टि मिल गई, और वहां पर असंख्य जीवों का घात हुआ, ये इसको कहते हैं हिंसानंद रौद्र ध्यान। एक फटाका फोड़ा तो हिंसानंद रौद्र ध्यान हुआ, ये पाप बंद किया, और विशेष रूप से किस दिन पाप बंद किया? विशेष पाप का बंद दीपावली के दिन ही किया। और फिर ये प्रश्न उठता है कि दीपावली पाप बंद के लिए आया है क्या, पुण्य करने के लिए आया है? और हम क्या कर रहे हैं? पुण्य बंद के लिए यदि दीपावली आई है तो इस दीपावली को कैसे मनाना चाहिए, क्या आप पद्धति अपनाएं, सोचना आवश्यक है कि नहीं? अगर हम उपदेश नहीं देंगे तो वही करेंगे, इसलिए लास्ट संडे है, कम से कम इनको पापों से बचाएं, ये भावना से हम दीपावली पर आज बोल रहे हैं। करेंगे आप लोग? पैसे पर ब्रेक लगाए रखना, बच्चे तो बहुत सताएंगे आपको, शिक्षा तो दी नहीं, संस्कार तो दिया नहीं, सबको बोल रहा हूँ, ये फोड़ते भी नहीं, लेकिन बच्चों को जोड़ करके पैसा जोड़ लेते हैं और देते हैं, तो इनको भी तो पाप है। पानी आया, सब लोग संकल्प ले लेना, फटाके से सावधान, फटाके नहीं फोड़ोगे, फटाके फोड़कर दीपावली न खुद मनाओगे और न किसी दूसरे को पैसा दोगे, पैसा देना भी पाप है, पैसा देना भी पाप और फटाके फोड़ना भी पाप है। टाइम हो गया? अच्छा, ये कैसे मनाना फटाके के संबंध में तो हमने कुछ सूत्र दे दिया, सूत्र दे दिया, इसको जलाना है, इस सूत्र से अपने सम्यक ज्ञान को जलाना है। अब ठीक, दूसरी बात हम बता रहे हैं, लाडू चढ़ाते हैं उस दिन लाडू, और कहते हैं निर्वाण लाडू चढ़ाते हम। निर्वाण लाडू चढ़ाते, लाडू किसको चढ़ाते? महावीर भगवान को। तो महावीर भगवान तो चले गए थे उस दिन, चौथे काल में पावापुरी से चले गए थे। पावापुरी में लड्डू खिला करके भेजा क्या मोक्ष? श्रावकों ने लड्डू खिलाया था। अरहंत अवस्था में उनको भूख प्यास की वेदना रहती है, भूख प्यास नहीं रहती। अरहंत भगवान को भूख प्यास की संवेदना नहीं है। और फिर हम जो लड्डू चढ़ाते हैं, ये लड्डू क्या है इस पर भी जरा प्रकाश डाल रहा हूं, सुन लेना संक्षिप्त में, आपका कार्यक्रम आगे का है। और लड्डू खाने की चीज है, आठ प्रकार के द्रव्यों से अष्टक करते हैं, पूजा करते हैं। वो द्रव्य में एक द्रव्य ऐसा है जिसका नाम नैवेद्य, लड्डू नैवेद्य की वस्तु है, नैवेद्य की वस्तु है। नैवेद्य चढ़ाते समय क्या बोलते हैं आप? क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। भगवान मोक्ष गए, मोक्ष फल को प्राप्त किया उन्होंने, मोक्ष प्राप्त किया था निर्वाण के दिन। क्या क्षुधा वेदनी को नष्ट किया था? क्षुधा वेदनी को तब नष्ट किया था जिस दिन उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उस दिन दीपावली का दिन नहीं था, है ना? जिस दिन क्षुधा वेदी ने नष्ट किया था उस दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। जिस दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और क्षुधा वेदनी को उन्होंने नष्ट किया था, उस दिन आप इस नैवेद्य को चढ़ा सकते हैं। क्षुधा रोग निवारणा ये नैवेद्यम निरूपामिति स्वा, लड्डू निरूपामिति स्वा, लड्डू नैवेद्य, लाडू निरूपामिति स्वा, लाडू नैवेद्य में आता है, आता है कि नहीं आता? तो इसको किस दिन चढ़ाना चाहिए? जिस दिन भगवान ने क्षुधा वेदनी को नष्ट किया था, खाना नहीं पड़ा उनको। हे भगवान, ऐसे ही अवस्था को मैं प्राप्त करने के लिए हम नैवेद्य चढ़ाते हैं। नैवेद्य तो अष्टक में रोज चढ़ाते हैं और विशेष रूप से लाडू चढ़ा रहे हैं, तो लाडू एक खाद्य वस्तु है और लड्डू तो लड्डू है, लड्डू तो लड्डू है, नैवेद्य है, फल नहीं माना जाता। फल को चढ़ाते समय क्या बोलते हैं? नहीं, मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निरूपामिति स्वा। भगवान ने मोक्ष रूपी फल को प्राप्त किया था, समझ में आया ना? भगवान ने निर्वाण के दिन कौन सा फल पाया? मोक्ष का फल। और मोक्ष फल का प्रतीक क्या होता है? कौन सा फल मोक्ष का फल? श्रीफल। श्रीफल, श्री यानी मोक्ष, श्री यानी मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष रूप लक्ष्मी का फल भगवान को प्राप्त हो गया था। नारियल श्रीफल ये मोक्ष फल है, इसको प्रतीक के रूप में, ये कोई आगम नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई आधार नहीं कि आप नारियल ही चढ़ाओ कि आप लड्डू ही चढ़ाओ या उस लड्डू में एक विशेष बात और उसमें पैसे घुसा दो। पैसे भी डाल देते हैं लोग, क्या क्या करते क्या मालूम, पैसे भी डाल देते हैं और चढ़ा देते हैं। अब पैसे सहित भगवान खाएंगे तो पेट में पैसे बचेगा कैसे? जीवन नहीं बचेगा, पैसा तो बच जाएगा, कोई खा लेगा, आप भी लड्डू खाते समय पैसा नहीं डालते, ये पैसा क्यों डालते, किसने कहा पैसा डालना चाहिए, पहला पासून, बस पहला पासून, बस ये कि आपका शास्त्र एक ही शब्द में पहला पासून, एक शब्द में आपका शास्त्र ही खत्म होता है। ये पैसा डालने की भी कोई पद्धति ठीक नहीं, देखो श्रीफल चढ़ाने की पद्धति भी कोई पद्धति नहीं है, मैं एक बता रहा हूँ, लाड़ू चढ़ाने की पद्धति तो कहीं उल्लेखित है ही नहीं शास्त्र में, परंतु कुछ करना चाहिए, ये जो लोगों की मन की इच्छा रहती है, उस इच्छा के प्रति एक प्रतीक आविष्कार किया जाता है, प्रतीक का आविष्कार, हम प्रतीक के रूप में क्या चढ़ाएं, क्या किसका प्रतीक, मोक्ष फल का प्रतीक, मोक्ष का प्रतीक क्या चढ़ाएं, कैसे चढ़ाएं, थोड़ा बच्चियों को मोक्ष फल का प्रतीक, तो मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपामिति स्वाहा कह करके आप उत्कृष्ट फल चढ़ाते हैं, वो उत्कृष्ट फलों में सबसे उत्कृष्ट फल कौन सा माना जाता है, श्रीफल, और श्रीफल में दो प्रकार का श्रीफल है, एक कच्चा और एक पक्का प्रासुप, इसमें कौन सा श्रेष्ठ, पक्का प्रासुक, जिसमें से पानी सूख गया खोबरा बन गया, खोबरा भी सूख गया तेल बन गया, तेल भी सूख गया गोटा बन गया, और उस नारियल के भीतर वो गोटा खड़खड़ खड़खड़ बजता है, वो श्रीफल कच्चे श्रीफल से श्रेष्ठ माना गया, जिसमें एक इंद्रिय आदि जीव नहीं, जिसमें कच्चापन नहीं, जिसमें सुगंधी है, उस नारियल के भीतर उस गोटे के भीतर तेल कब बनता है, खोबरा कच्चा रहते समय नहीं, सूखने के बाद जलांश उसके भीतर जितना भी होता है वह सूख जाने के बाद वह सुगंधित हो जाता है, गोला तेल से युक्त होता है और उसकी सुगंधि आती है, सूख जाता है अर्थात वह सूखने के उपरांत उसमें एक भी कोई जीव रहता नहीं है, न एक इंद्रिय रहते हैं न त्रस्कायिक जीव रहते हैं, जीवों से रहित हिंसा से मुक्त अगर कोई फल है तो वह है सूखा फल, निर्दोष फल, श्रेष्ठ फल, पक्का फल, कच्चा नहीं, प्रासुक फल। भगवान निर्वाण के दिन मोक्ष उन्होंने प्राप्त कर लिया, उन्होंने क्या क्या त्यागा देखो, उस दिन त्यागने के लिए बहुत कुछ था, सब कुछ त्याग दिया, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, केवल शरीर और एक बार आहार ग्रहण करना, ये दो चीजें शेष थी उनकी, मुनि अवस्था तक। मुनि अवस्था में भी आहार लेते लेते एक दिन जब केवल ज्ञान ही हो गया तो आहार लेना भी बंद हो गया, जब केवल ज्ञान हो गया तो घाती कर्म सारे के सारे नष्ट हो गए, घाती कर्म नष्ट होने के उपरांत अब अघाती कर्म बच गए, अब अघाती कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, अघाती कर्म और यह नो कर्म, नाम कर्म का फल कहलाता है, ये शरीर नो कर्म है, शरीर नो कर्म है, इस शरीर को और घाती कर्मों को दोनों को एक साथ उन्होंने नष्ट किया, नो कर्म को नष्ट करने से, द्रव्य कर्म को नष्ट करने से नो कर्म बचता नहीं है, शरीर भी नहीं बचेगा और घाती कर्म भी नहीं बचेंगे, वो श्रीफल मोक्ष फल का प्रतीक है, उसको क्या समझना, ऊपर का जो कवच है वो शरीर है उसका, खोबरे का शरीर, और खोबरा स्वयं जो आत्मा है वो गोला है, गोले का शरीर कवच है, और उसमें तीन आंखें वो रत्नत्रय है, तीन आंखें हैं वो रत्नत्रय, गोला वो आत्मा है, और उसमें तेल वो सुगंधित सुगंधित अनंत ज्ञान है, अनंत गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत गुण सिद्ध परमेश्वर के पास होते हैं ना। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आठ कर्मों के अभाव से आठ गुण प्रकट होते हैं। वो गुण आत्मा की सुगंध हैं, और आत्मा स्वयं एक गोला है, और जिस दिन वो मोक्ष गए थे शरीर भी उनके पास नहीं बचा, शरीर को भी यहीं छोड़ दिया, केवल आत्मा और वो आठ गुण उनके साथ थे। द्रव्य कर्म, घाती कर्म, आघाती कर्म उनको भी नष्ट कर दिया। तो प्रतीक, मोक्ष फल का प्रतीक श्रीफल है। इस श्रीफल का जो कवच है वो भगवान महावीर के शरीर के रूप में हम मानते हैं, शरीर यहीं छोड़ दिया था, और उनकी जो आत्मा है वो खोबरे के गोले के समान है, और उस गोले के ऊपर जो काला काला एक कवच होता है, काला खोबरे गोले के ऊपर, वो आघाती कर्म है, वो भी तो कालापन है। आत्मा शुद्ध है, सफेद है, खोबरे का वर्ण क्या है, शुद्ध है, सफेद है, तेल का वर्ण क्या है, तेल का वर्ण आप नहीं बता सकते, तेल का कोई वर्ण नहीं होता, पानी का कोई रंग नहीं होता, तेल शुद्ध तेल जो होता है उसके पास कोई अपना वर्ण नहीं होता। खोबरे का वर्ण तो है, उस खोबरे के भीतर जो तेल है वह तेल अनंत गुण का प्रतीक है वो, और ऐसी दशा उनको प्राप्त हो गई थी, और वो ऊपर का काला कवच वो भी नहीं था, वो आघाती कर्म के रूप में उसको भी उन्होंने नष्ट कर दिया। तो शरीर नहीं था, काला कवच नहीं था, क्या कहे, कवच कहें क्या उसको, काला परत उसके ऊपर था वो भी नहीं था, तो गोला कैसे था, सफेद, और उसमें क्या था, तेल। वो सफेद गोला वो आत्मा का प्रतीक, और उसमें जो तेल है वो अनंत ज्ञान आदि गुणों का प्रतीक, ऐसा श्रीफल मोक्ष फल है, निर्वाण फल है, इसी को निर्वाण लाड़ू कहते हैं। असली निर्वाण लाड़ू ये है, नैवेद्य असली निर्वाण लाड़ू नहीं, नैवेद्य नहीं चढ़ाया जाता है उसमें पैसा डालकर, ये तो पहला प्रसून की बात अलग है, लेकिन सच में ये जो श्रीफल इस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, जिस किस प्रकार से उस काले कवच को भी हटाकर गोले को, सफेद गोले को छील करके उसको सफेद गोले को चढ़ाया जाता है, लड्डू जैसा लगता है कि नहीं, अब छील करके देख लो दूसरे दिन, लड्डू में और उसमें कोई फर्क नहीं लगता, है असली लड्डू यही मोक्ष का प्रतीक, पर ये लड्डू तो क्षुधा वेदनी को दूर करने का प्रतीक है, भगवान ने क्षुधा वेदनी को दूर नहीं किया था उस दिन, उस दिन उन्होंने मोक्ष फल प्राप्त किया था। तो मोक्ष फल के प्रतीक के रूप में हमें क्या चढ़ाना चाहिए, तो श्रीफल ही चढ़ाना चाहिए, जो कि अष्टक के टाइम में भी हम श्रीफल ही चढ़ाते हैं। कैसा श्रीफल चढ़ाते हैं, श्रीफल जो कवच सहित है, सूखा है, जो पानी से मुक्त है, अरहंत भगवान पानी, पानी क्या चीज है, पानी देखो मिथ्यात्व रागादि भाव और अज्ञान, ये भाव कर्म कहलाता है, तीनों मिथ्यात्व रागादि भाव और अज्ञान ये तीनों भाव कर्म है। भाव कर्म रागादि भाव है, रागादि भाव उसमें रहते हैं जो केवल ज्ञान को प्राप्त अभी नहीं किया है, उस आत्मा में रागादि भाव रहते हैं। और इन रागादि भावों को सुखाने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये रागादि भाव क्या है, तो जल भाग है। ये रागादि भाव जल भाग सूख जाए तो वह श्रीफल केवल सूखा रह जाता है और वह धीरे 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 अपने संबंध को भी त्याग देता है शरीर से और बजने लगता है। ऐसे श्रीफल को हम चढ़ाते हैं अरहंत भगवान के लिए, जिसमें पानी नहीं, यानी रागादि भाव नहीं, वो भी एक प्रतीक ही है, रागादि भाव नहीं। और जिसमें ये है कि रागादि भाव नहीं, कवच नहीं, और उसके ऊपर का काला काला लेप जो परत भी नहीं, उसको छील करके निकाल दिया तो सिद्ध परमिष्टि का द्योतक और प्रतीक माना जाता है, उस प्रतीक को चढ़ाया जाता है। ऐसी दीपावली इस बार मनाइए। टाइम तो जा रहा है, आपका आगे का कार्यक्रम है, तो दीपावली के संबंध में जो कुछ आपको अभी मनाने की एक पद्धति मिली है उसको उसी रूप में मनाएंगे तो बाहर भी ठीक रहेगा और अंतरंग में भी ठीक रहेगा। फटाके से तो इस साल से ये संकल्प ही लेना है कि कभी हम फटाके न फोड़ेंगे और न बच्चों आदि को फोड़ने के लिए अनुमोदना देंगे, न पैसा देंगे, उनको भी बचाएंगे इससे। ये संकल्प ले, बहुत अच्छा होगा। आज का
आप लोग बैठे रहेंगे।